हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही था। वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रहा था, तभी उसके पास वीर का वीडियो कॉल आया। ध्रुव ने कॉल रिसीव किया तो वीर इस वक्त तारा के साथ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तारा फिर से बाहर की तरफ देख रही थी और बार बार अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। तारा को रोते हुए देखकर ध्रुव को बुरा लग रहा था। वो जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर आया। ध्रुव ने सख्त आवाज में पूछा, क्या चल रहा है वहां पर और तारा रो क्यों रही है? ध्रुव की आवाज सुनकर तारा ने जल्दी से वीर की तरफ पलटी तो देखा वीर मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ करके ही बैठा था। उसकी इस हरकत पर तारा ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वीर ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। तभी ध्रुव ने तारा से फिर से पूछा, वाई आर यू क्राइंग तारा, फिर से कुछ हुआ है? अपनी फैमिली की याद आ रही है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है ध्रुव, मैं ठीक हूँ, बस कई बार इमोशनल हो जाती हूँ, तारा ने खुद को सख्त करके जवाब दिया। उसकी एक ही कमजोरी थी, जब कोई उससे थोड़ा भी प्यार से बात करता तो उसका दिल पिघलने लगता था। बचपन से तारा हमेशा प्यार के लिए तरसी थी, तो जब भी कोई प्यार दिखाता उसका सॉफ्ट साइड उस पर हावी होने लगता। तभी वीर ने मोबाइल स्क्रीन अपनी तरफ करके कहा, ये तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली है, मैं बताता हूँ। तुम्हारी प्यारी और लाडली बहन एल ने इसके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। उसे अभी भी लगता है कि तारा तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए आई है, और तुम जानते हो कि वो तुम्हारी तरह ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। बस इसी चक्कर में उसने तारा को काफ़ी कुछ कह दिया और हमारी तारा मैडम आंसू बहा रही है। हाँ तो मैं भी इंसान ही हूँ और मुझे भी बुरा लगता है, तारा ने दूसरी तरफ देख कर कहा। अच्छा वीर, ऐसा करो फिर तुम ही तारा के पास रुक जाओ, मैं एल से बात कर लूँगा। एंड यू तारा, अभी तो मुझे गए 2 ही दिन हुए, तुम परेशान लग रही हो, खुद को नॉर्मल करो, वीर लगाए तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढने में, ध्रुव ने उससे समझाते हुए कहा। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी। अब वीर और ध्रुव आपस में बात करने लगे। अचानक वीर के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मार्टिन इतना भी पावरफुल नहीं है ध्रुव, वो बस एक प्यादा है जो लड़कियां स्मगल करने का काम करता था, मुझे कोई और इन्वॉल्व लग रहा है। मुझे भी यही लगा था, वरना अंडरवर्ल्ड में कितने पांव कहाँ और कितने फैले हैं ये हमसे छुपा नहीं है, तारा को मत बताना, लेकिन मुझे इसमें कोई व्हाइट कॉलर इन्वॉल्व लग रहा है, ध्रुव ने सीरियस टोन में कहा। व्हाइट कॉलर से उसका मतलब उनसे था जो अक्सर अपनी पोजीशन, पावर और अच्छी नौकरी का नकाब ओढ़ कर रखते थे। अगर ऐसा है तो अब मैं अपनी तलाश का दायरा अलग करता हूँ, वीर बोला। वीर ध्रुव या बाकियों के सामने कितना भी लाइट बिहेव करे, लेकिन वो मलिक का बेटा था और अपने काम से उसने ये साबित भी किया था। हालांकि मलिक को उसके काम करने का तरीका थोड़ा कम ही पसंद था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के सबके ठिकाने से लेकर उनकी बाकी इन्फॉर्मेशन वीर को याद थी, उसकी ट्रेनिंग भी युग ने ही करवाई थी। वहीं तारा को उनकी बातें ठीक से समझ तो नहीं आई थी, पर वो मिली और उसके भाई बहनों को ढूंढने की बात कर रहे थे ये उसे समझ आ गया था। वो अब तक नहीं मिले थे और इसका कारण तारा अच्छे से जानती थी। तारा ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी इस दोस्ती के लायक नहीं हूँ ध्रुव, तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो जबकि मुझे तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ही भेजा गया था। कबीर सर जो भी कहें, लेकिन मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे कैसे भी करके वीर की हेल्प करनी होगी ताकि वो मिली के भाई बहनों तक पहुंच सके। उसके बाद मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कबीर चाहे तारा को कितना भी फोर्स क्यों ना कर ले, लेकिन तारा वो कभी नहीं करने वाली थी जो करने का उसका दिल नहीं चाहता था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अच्छी और बड़ी पोजिशन पर देने वाले ईमानदार लोग भी करप्ट हैं, जबकि बुरे काम करने वाले माफिया भी साफ दिल हो सकते थे। कुछ ही देर में वीर तारा को लेकर युग के विला पहुँच चुका था। रास्ते में वीर ने उनके लिए खाना पैक करवा लिया था और आते ही दोनों खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वीर से बात होते ही ध्रुव ने तुरंत अलीजा को कॉल किया। अलीजा ने कॉल रिसीव करते ही सार्कास्टिकली कहा, अच्छा तो तुम्हारे उस चमचे ने मेरी शिकायत लगाई दी थी। माइंड योर लैंग्वेज एल, ध्रुव ने सर्द आवाज में कहा, आगे से वीर के लिए ऐसा वर्ड गलती से भी यूज मत करना। तुम लोग जितना मेरे लिए मायने रखते हो उतना ही वीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेरा भाई, दोस्त, पार्टनर इन क्राइम, सब कुछ है। हाँ ठीक है, मुझे वीर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर वो भी जो कर रहा है वो सही नहीं है। क्या जरूरत थी उसे तुम्हें कॉल करके सब बताने की? कुछ चीज अपने पेट में नहीं रख सकता क्या? अलीजा ने तुरंत अपनी मिस्टेक सुधारते हुए कहा, वो इसलिए बताता है क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। एल, तुम अपनी जिद में मेरे अपनों को हर्ट कर रही हो, तारा मेरी फ्रेंड है और वीर को तुम कुछ भी बोले जा रही हो, ध्रुव ने उसे नरमी से डांटते हुए कहा। तारा कब से तुम्हारी अपनी हो गई ध्रुव? वीर के लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन उस लड़की पर मुझे आज भी यकीन नहीं है। रही बात अपनों की, तो मैं भी तुम्हारी बहन ही हूँ, अलीजा ने नाराजगी जताते हुए कहा। बहन हो तभी प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, ऐसे ही मैंने तारा पर यकीन नहीं किया है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर किसी पर मुंह उठाकर यकीन कर लूँ और उसे अपना दोस्त बना लूँ। आज तक मैंने किसी की तरफ सामने से फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ाया है। उसने मेरे और अलीशा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की है, मेरे लो मोमेंट्स में मुझे संभाला है। वो सच में एक विक्टिम है जो हमारी वजह से मुसीबत में आ गई है, ध्रुव ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि उसे इसके लिए ट्रेन किया गया है, तुम्हारा दिल जीतना है उसे। आज तो तुम्हारे कहने पर मैं चुप रह जाती हूँ, लेकिन जिस दिन वो लड़की तुम्हें धोखा देगी ना ध्रुव, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतना भी यकीन मत करो। और तुम्हारी बातें साफ बता रही है कि उस लड़की ने तुम्हारे दिल में घर करना शुरू कर दिया है। मेहर से शादी करने वाले हो ना तुम, लेकिन तुम्हारी जुबान पर मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। तारीफ करनी तो दूर की बात है, और तारा की तरफदारी करने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है। मैंने मेहर को दिल्ली छोड़ा था, तुमने एक बार कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि वो सही सलामत पहुंच गई है या नहीं, और यहाँ मेरे तारा के साथ एक छोटी सी बहस के चलते तुम मुझे कॉल करके डांट रहे हो। वेरी गुड ब्रो, यू आर ट्रैप्ड। अलीशा ने गुस्से में ध्रुव को बहुत कुछ सुना दिया था। तुमसे बहस करना बेकार है, और मैं उससे कोई प्यार नहीं करता हूँ। मिलने पर बात करते हैं एल, एंड फॉर गॉड सेक तब तक तारा को कुछ मत कहना, ध्रुव ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। ध्रुव गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, एक तो पता नहीं सबको ये क्यों लगता है कि मुझे तारा से प्यार हो जाएगा, या वो मुझे अच्छी लगने लगी है। पहले वीर तो अब अलीशा, इन्हीं की वजह से मेरे दिल में भी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। कैसे समझाऊं इन लोगों को? ध्रुव मन ही मन खुद को तसल्ली दे रहा था कि तारा उसकी सिर्फ दोस्त है। ऐसा करके वो सिर्फ खुद को धोखा ही दे रहा था, जबकि जब से वो लंदन आया था उसे दिन रात तारा की याद आ रही थी। ध्रुव का मूड उखड़ा हुआ था। वो जानता था कि घर आकर वो याशी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ध्रुव घर पहुंचा, उसने देखा घर पर कृषा के अलावा और कोई नहीं था। एंजल कहाँ है कृष? ध्रुव ने कृषा के पास जाकर पूछा।
कृषा ने एक पल उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो इस वक्त काउच पर बैठी हुई थी। ध्रुव उसके पास आकर बैठा तो कृषा ने उसका कंधा अपने सर पर रख दिया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अब बताओ क्या हुआ है जो मुझ तक शेयर नहीं करना है, और याशी के साथ में टाइम बिताकर तुम्हें खुद का मूड सही करना है? कुछ नहीं हुआ है कृष, ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा। कृषा के कंधे पर सर रखकर उसे दुनिया जहां का सुकून महसूस हो रहा था। फिर उसने अपना सिर कृषा की भूद में रखा और वहीं काउच पर लेट गया था। बेचैन लग रहे हो ध्रुव, जानती हूँ बड़े हो गए हो तो हर बात शेयर नहीं कर सकते हो। मैं युग जितनी मैच्योर भी नहीं हूँ जो तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, फिर भी चाहो तो बता सकते हो, कृषा ने उसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से कहा। बस आपकी यही मासूमियत देखकर हम सब हार जाते हैं कृष, और किसने कहा कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हो? जब आपके पास होते हैं तो लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा और कृष का हाथ पकड़कर उस पर हल्के से किस किया। उसके ऐसा करने पर कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, योग याशी के साथ ऊपर मूवी हॉल में है, दोनों मूवी देख रहे थे, मेरा मन नहीं था तो मैं नीचे आ गई। आपका उनके साथ थिएटर में जाने का मन नहीं है? ध्रुव ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। याद है ना, वो वही जगह है जहां पर डैड ने पहली बार गलती सही लेकिन आपको किस किया था। आपने उनके साथ पहली मूवी डेट की थी, वो डेट तुम्हारी सारा मासी के लिए थी, मैं तो ज़बरदस्ती बीच में आ गई थी। दूसरा, वो किसी भी गलतफहमी की वजह से हुआ था, और तुम्हें नहीं पता कि उसे एक किस के चक्कर में मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा था, कृषा ने मुंह बनाकर कहा। ध्रुव सब कुछ जानता था, फिर भी वो युग और कृषा की लव स्टोरी को हमेशा इंटरेस्ट से सुनता था। कृषा ने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा तो वो सिर हिलाकर बोली, मेरी बात क्यों कर रहे हो, अपनी बात करो ना, अब तो तुम्हारी भी सगाई हो गई है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी तुमसे मिलने के लिए आती रहती है। तुम दोनों के बीच कभी कोई मोमेंट क्रिएट हुआ जो तुम्हें याद हो या अच्छा लगे? अभी तक तो नहीं, ध्रुव ने बिना किसी झूठ के जवाब दिया। वैसे भी वो बिल्कुल युग की तरह था, चीज़ें छुपाना उसे कम ही पसंद था, जब तक मजबूरी ना हो, खासकर कृषा के सामने। मुझे तुम्हारी फियांसी पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, कृषा ने हंसकर कहा। वो आज भी मेहर का नाम नहीं लेती थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव मन ही मन बोला, और जो चीज़ मेरी कृष को पसंद नहीं वो अच्छी हो भी कैसे सकती है? ध्रुव के चुप होने पर कृषा ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ध्रुव ने जवाब दिया। कृषा ने फिर उसे समझाते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम नापसंद करो। शादी करने जा रहे हो तो दिल से निभाना, और दूसरी रिस्पेक्ट करना। मैं भी तुम्हारे डैड से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने ज़बरदस्ती की। शादी होने के बाद भी उसने कभी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। रही बात स्पेशल मोमेंट्स की, तो अपनी मुलाकातों के बारे में सोचो तो कोई ना कोई याद आ ही जाएगा। और किसने कहा आप मैच्योर नहीं हो, कितने अच्छे से सब समझा रही हो, ध्रुव बोला, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे। उसने एक झटके में आंखें खोली। ध्रुव हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। कृषा ने उसके चेहरे के बिगड़े हुए भाव देखे तो जल्दी से पूछा, क्या हुआ बेबी, घबरा क्यों रहे हो? नहीं कृष, आई एम फाइन, इट सीम्स लाइक काम से डिस्ट्रैक्ट रहने लगा हूँ, ध्रुव बोला। अगर ऐसा है तो एग्जाम्स के बाद चलते हैं एडवेंचर पर, युग बोला। वो वहां आ गया था और उसने याशी को गोद में ले रखा था। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगा। आप चाहो तो एंजल का एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हो, आई विल टेक केयर ऑफ हर, ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा। उसने आंखें बंद करने पर जो देखा था वो देखने के बाद वो ये डिसीजन लेने पर मजबूर हो गया था। उसने कभी भी खुद को इतना लाचार और कमजोर महसूस नहीं किया था। ध्रुव की आंखें काफी कुछ कह रही थी। उसे देखकर युग के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। उसने याशी को उसकी नैनी को देते हुए कहा, जितना दूर भागोगे उतना ही फंसते जाओगे, बेहतर होगा कि जिससे भाग रहे हो उसे फेस करो। युग से बेहतर ध्रुव की हालत कौन समझ सकता था। वो अंदर ही अंदर अपने जज्बातों से लड़ रहा था। ध्रुव ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चला गया। वहीं उसके जाते ही कृषा ने युग के पास आकर हैरानी से पूछा, किस चीज से भागने की कोशिश कर रहा है वो। उसी चीज से जिससे सालों पहले मैं भागना चाहता था। मैंने भी यही डिसीजन लिया था और वो भी यही कर रहा है, युग ने जवाब दिया। कृषा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन युग का इशारा उस तरफ था जब उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कृषा को वापस ऑस्ट्रेलिया भेजने का डिसीजन लिया था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव साइकिल लेकर विला के गार्डन एरिया में साइकिलिंग कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ लम्हे चल रहे थे जो उसने आंख बंद करने पर देखे थे। ये लम्हे मेहर के साथ नहीं तारा के साथ थे, जब तारा ने उसे गले लगाया था और उसे शांत करने की कोशिश की थी। उस वक्त ध्रुव इतना बेचैन था कि उसने तारा से करीबी को महसूस तक नहीं किया था, लेकिन आज अब उससे दूर होने पर उसे हर एक लम्हा अच्छे से महसूस हो रहा था। नहीं, मैं प्यार जैसी फीलिंग में तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, खुद को इन सबसे दूर कर लूंगा, ध्रुव ने मन ही मन कहा और युग की तरह तारा से पूरी तरह दूर होने का डिसीजन लिया।